आजकल एक करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, वो डिजिटल करेंसी, और मुख्तलिफ जगहों पर इस पर बातचीत भी हो रही है। बहुत सारी डिजिटल करेंसीज हैं, कई ममालिक में ये गैर कानूनी भी तसव्वुर की जाती है, कहीं पर ये कहा जाता है नहीं फ्रॉड है। डिजिटल करेंसी का, इसको अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जायजा लें तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वर्चुअली कहीं एग्जिस्ट करती है, लॉजिकल है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, उसको किस तरह देखते हैं आप?
उसी तरह देखना चाहिए जैसे इससे पहले हम करेंसी को देखने की गलती में मुब्तला रहे। आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि सोना लाइए कहीं से और उसके बाद आपको हक हासिल है कि आप मुबादला करें।
सही,
आपकी दिलचस्पी की चीज़ है, मलेशिया में मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ एक रियासत में उलमा की हुकूमत है और पिछले 25-26 साल से उलमा वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। शुमाल में एक रियासत है वहाँ, तो उन्होंने एक ज़माने में सोने के सिक्के जारी कर दिए और ये कहा कि यही करेंसी होगी। तो लोगों ने शौक से खरीद के घर में रख लिए और उसके बाद खात्मा हो गया उसका। तो इसलिए ये जो करेंसी के मामलात हैं ये असल में दुनिया के उर्फ पर चलते हैं।
ठीक है,
ये जो कागज़ आपकी जेब में है और मेरी जेब में भी है,
इसकी भी कोई,
इसके बारे में आदमी कब ख्याल कर सकता था कि इसकी ये हकीकत होगी कि इसको हम देंगे और ये हमारे लिए एक कुव्वत बन जाएगा और इससे मुबादला होगा और ये दे के हम दुनिया की आला से आला चीज़ें खरीद के ले आएंगे। ऐसा नहीं था ना, यानी पहले तो आपको मुबादला करना होता था, जा कोई आप चीज देते थे या
बार्टर,
फिर
बार्टर सिस्टम जो था,
या बार्टर सिस्टम
जी हाँ,
मुबादले का उसूल था।
बिल्कुल,
और या ये है कि सोने और चांदी को जो कीमती धातें थी बना दिया गया था, उसमें कीमत बराबरी होती थी, यानी सोने की वो ताकत मौजूद होती थी अमली तौर पर जो आपके लिए खरीदारी का जरिया बनती थी। तो अब एक कागज का नोट है। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि प्लास्टिक करेंसी वजूद में आती है, आप जेब में एक कार्ड डालते हैं उसके बाद चले जाते हैं और सारे मामलात बैंकारी के निजाम के तहत होते चले जाते हैं।
ठीक,
यानी कौन आदमी है कि जो आप अपनी जेब में हजारों डॉलर डाल के निकलता है, एक या दो कार्ड आपने डाले होते हैं और आप सारी दुनिया में जो कुछ खरीदना है खरीद लेते हैं। तो अगर कोई नई चीज ईजाद हो जाएगी तो वो इसी उसूल पर एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको बिल्कुल खालिस माशी उसूलों पर देखना चाहिए। मुबादले के तरीके आज के ज़माने में एक हो सकते हैं, माजी में दूसरे थे, मुस्तकबिल में क्या क्या वजूद में आ जाएंगे, इस पर मजहब को कोई हुक्म लगाना भी नहीं चाहिए। मजहब का हुक्म हमेशा अखलाकी होता है, यानी अगर उसके अंदर कोई अखलाकी कवाहत होगी तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि इंसान का अखलाकी वजूद है जिसको पाकीज़ा रहना चाहिए। इसके सिवा दुनिया में किस चीज़ को आपने क्या हैसियत देनी है, उसके कवानीन क्या बनाने हैं, ज़ाब्ते क्या बनाने हैं, ये मज़हब का मौजू नहीं है। जो लोग इस तरह की चीज़ों को मज़हब का मौजू बनाते हैं वो जल्द या बदेर शिकस्त खा जाते हैं।
आपने बजा फरमाया कि मज़हब का मौजू नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी के हवाले से जो एक जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर में पाया जाता है वो ये कि इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड होता है और बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सोने में आमतौर पर इतना फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं आता या दूसरी करेंसी में, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि इसके बैक पे सपोर्ट कोई नहीं है, जैसे कागज़ का नोट जो मेरी जेब में रखा है उस पर लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। इस डिजिटल करेंसी को ओन कोई नहीं कर रहा, कोई बैंक नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रहा, और नहीं कर रही गवर्नमेंट। और दूसरा, फ्लक्चुएशन बहुत रैपिड होता है, तो इसमें इस बात का कवी इम्कान है कि किसी एक शख्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और कोई दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा फायदे में रहे, तो ये जुए की सी कैफियत बन जाती है। उस लिहाज से मैं जानना चाहता
हूँ, अगर एक फर्द फर्द की हैसियत से ये महसूस करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें जुए से किसी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उसको अपने अखलाकी तथहीर और पाकिजगी के लिए इससे हाथ खींच लेना चाहिए। यानी मजहब का मुखातब तो फ़र्द है ना,
ठीक,
उसको हम ये कहेंगे कि वो अपने तमाम आमाल पर निगरान रहे। अगर वो महसूस करता है कि किसी जगह वो दूसरे को धोखा दे रहा है या उसमें धोखे का इम्कान पैदा हो रहा है, कोई ज़रर पैदा हो रहा है, किसी के लिए कोई नुकसान का वो बायस बन रहा है, तो वो अपनी तथहीर के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए ऐसे कामों से इज्तनाब करे। रहा ये मामला कि कौमी सतह पर या बैन अल-अक़वामी सतह पर किसी चीज़ को कबूल करना है, तो आपने खुद फरमा दिया कि अभी इसको ना बैंक कबूल कर रहे हैं ना इसको हुकूमतें कबूल कर रही हैं। तो करेंसी चूँकि मुबादले की ज़मानत है, इसलिए या तो उसको किसी कौम का नज़्म इज्तमाही कबूल करेगा या बैन अल-अक़वामी कवानीन कबूल करेंगे, उसके बाद ही वो एक जायज़ काम होगा। तो इस वजह से इस वक्त तो ये काम बैन अल-अक़वामी कानून के लिहाज से भी जायज़ नहीं करार पाया, तो हम इसमें खामखा राय देने के लिए क्यों बैठ गए हैं?
ठीक,
यानी इसको पहले उन सब मराहल से गुजरने दीजिए। अगर इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर कबूल कर लिया जाएगा तो ये ऐसी ही कबूलियत होगी जैसी अब क्रेडिट कार्ड की हो गई है, जैसे आपके डेबिट कार्ड की हो गई है, जैसे प्लास्टिक करेंसी वजूद में आ रही है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें वजूद में आई हैं। ये जो आपका नोट है ये कोई एक दिन में मान लिया गया था। आप अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितने उलमा ने इस पर किताबें लिखी, اور ایک لمبے عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ چیز کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اب یہ کام کرنا چاہیے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی اخلاقی قباحت ہے تو فرد کو تلقین کریں کہ وہ اپنی اخلاقی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن مجید نے دیکھیے جوئے پر گفتگو کرتے ہوئے بعض اخلاقی پہلو اور بعض روحانی پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے. مثلا یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے گی. تو آپ دیکھیے دینی لحاظ سے تو چیزیں اس طرح بھی چھوڑنی پڑتی ہیں. ایک چیز میرے باطن پر اثر انداز ہو رہی ہے, ایک چیز میرے اخلاقی وجود کو آلودہ کر رہی ہے, ایک چیز مجھے خدا کی یاد سے غافل کر رہی ہے, ایک چیز میری مذہبی حیثیت کو مجروح کر رہی ہے, ایک چیز نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ایک بندہ مومن کی حیثیت سے مجھے چھوڑنی چاہیے. تو فرد کا اپروچ بالکل مختلف ہوتا ہے. بین الاقوامی قانون جب کسی چیز کو مبادلے کی چیز کے طور پر تسلیم کر لے گا, ہو سکتا ہے کہ اور 10 سال کے بعد تسلیم کر لیا جائے, تو اس کے بعد آپ کیا بحث کریں گے پھر اس پر. تو اس وقت یہ بحث میں اس کو قبل از وقت سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کو پہلے ادھر سے قبولیت ملنی چاہیے. یعنی کرنسی کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن ایک نوٹ چھاپا تھا اور اس کے بعد بیٹھ کے اس پہ بحث کر رہے تھے. دنیا میں اس کو قبول عام حاصل ہو گیا, اس کو مبادلے کی ایک ضرورت کے طور پر قبول کر لیا گیا, اس کے بعد ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں مبادلے کے طور پر قبول کی جاتی ہیں, کبھی عرف اس کا فیصلہ کرتا ہے, کبھی رسوم و رواج فیصلہ کرتے ہیں, کبھی بین الاقوامی قوانین فیصلہ کرتے ہیں. وہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمارا کنسرن بحثیت ایک مسلمان کے صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے بس. اور اخلاقی خرابی تو ساری دنیا مان لے تب بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے.
ٹھیک ہے.